जादुई बर्तन। तमिलनाडु की एक लोक कथा। कथा वायु नायडू, चित्र मुग्धा शाह, अनुवाद सुषमा आहूजा, आवाज मधु अग्रवाल। मुत्तु और चेलम अपने 11 बच्चों के साथ बरगद के पेड़ में रहते थे। मुत्तु नाटककार था, उसने कई नाटक लिखे। गांव के लोग उसके नाटक बहुत पसंद करते थे, पर जब भी वह थोड़े से पैसे कमाता, कोई ना कोई उससे उधार मांग लेता। चेलम भी बहुत मेहनत करती थी। वह दूसरों के घरों में खाना पकाती और सफाई करती थी। उसे अपने भविष्य की बहुत चिंता रहती। जब तक बच्चे छोटे हैं, यह बरगद ठीक है, वह मुत्तु से कहती। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? हमें घर चाहिए ही क्यों चेलम, मुत्तु कहता। अब तक बरगद ने हमें इतनी अच्छी तरह पाला है, आगे भी पालेगा। तुम चिंता करना छोड़ दो। और वह वापस नाटक लिखने में जुट जाता। फिर भी चेलम को चिंता रहती। एक दिन सूरज उगते ही चेलम ने कुछ बासी चावल एक छोटी सी हांडी में रखे, उसे कपड़े में बांधकर मुत्तु के हाथों में थमा दिए। यह लो, चेलम ने कहा, मुझे वचन दो कि इस बार तुम जरूर कोशिश करोगे और पैसे कमाकर लाओगे। ठीक है, मुत्तु ने जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आखिर चेलम भी तो अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करती थी। मुत्तु जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जंगल में नारंगी तितलियां लताओं पर ऐसे बैठी थीं मानो आग की लपटें हों। भंवरे गुनगुना रहे थे। कितना सुंदर, मुत्तु ने सोचा। पत्तों के बीच में से सूरज की किरणें नाच झांक रही थीं। अरे, मैं सूरज को पकड़ सकता हूँ, मुत्तु किरणों को पकड़ने की कोशिश करने लगा और हंस पड़ा। दूर कहीं कोयलें भी पुकार रही थीं। मुत्तु पेड़ों के एक झुंड में पहुंच गया। अचानक सभी पेड़ एक जैसे दिखने लगे, हर रास्ता एक जैसा नजर आने लगा। मैं तो भटक गया हूं, हांडी को पेड़ की टहनी पर लटकाते मुत्तु बोला, और मुझे बड़ी जोर से नींद आ रही है। दूर कहीं बहते पानी की मीठी आवाज सुनाई दी। जैसे ही मुत्तु ने अपना सिर नीचे रखा, वह गहरी नींद में डूब गया। इस जंगल में रहते थे पेड़ों के फरिश्ते। जब उन्होंने मुत्तु को देखा, वे खिलखिलाते पेड़ों से नीचे उतर आए। देखो देखो, एक ने हांडी की ओर इशारा करते हुए कहा। जल्दी से उन्होंने हांडी को उतारा और ऊपर बंधे हुए कपड़े को खोल दिया। कैसी खट्टी बासी गंध! इडली मसाला डोसा सांबार और मैसूर पाक, इन सब के बारे में तो फरिश्ते जानते थे, लेकिन यह हरी झाग वाली चीज तो कुछ नई ही थी। चुटकी में उन्होंने हांडी सफा चट कर दी। मुत्तु जाग गया। उसे भूख लगी थी, पर हांडी तो खाली थी। ओह, अब मैं क्या करूं, मुत्तु ने कहा। अचानक पांव के पास उसे चमकती हुई कोई सुनहरी सी चीज दिखाई दी। यह क्या, उसने सोचा और उसको जमीन से उठा लिया। वह पीतल का एक छोटा सा बर्तन था। काश खाने के लिए कम से कम इतना ही भोजन मिल जाता। पेड़ों से फरिश्ते झट से नीचे उतर आए। उन्होंने मुत्तू के सामने केले का पत्ता बिछाया। एक फरिश्ते ने उसे अचार परोसा, दूसरे ने चटनी, फिर गरम गरम चावल, साथ में घी, उसके ऊपर सांभर। क्या खुशबू थी! खाओ दोस्त, खाओ, फरिश्तों ने कहा। मुत्तू तो बस खाता ही गया। खाना खत्म कर उंगलियां चाटते मुत्तू बोला, मजा आ गया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो फरिश्ते गायब हो चुके थे। मुत्तू ने मुड़कर बर्तन को देखा। यह तुम्हारे लिए है, पेड़ से मीठी सी आवाजें आईं। यह एक जादुई बर्तन है। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्तों, मुत्तू ने कहा और घर की तरफ भागा। शाम हो चुकी थी। उसे अपने भूखे बच्चों का रोना सुनाई दे रहा था। मुत्तू ने बरगद के सामने बर्तन रख दिया, फिर एक दिया जलाया, हाथ जोड़े और कहा, मैं चाहता हूँ कि आज रात मेरी पत्नी और बच्चे भर पेट सोएं। बरगद से फरिश्ते उतर आए। उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से नहलाया, उनके बालों में तेल लगाया, उन्हें साफ सुंदर कपड़े पहनाए, फिर उन्हें खाना खिलाया। बच्चों ने इतना खाया कि बैठे बैठे वहीं सो गए। अगले दिन मुत्तू और चेल्लम ने उन सबको दावत में बुलाया जिन्होंने बुरे समय में उनके परिवार को खाना खिलाया था। हमारी दावत एक गरीब के घर में है, अच्छा होगा हम घर से खाकर ही निकलें, गांव वालों ने एक दूसरे से कहा। मगर गजब की बात, फरिश्तों ने मेहमानों को तरह तरह के चावल, स्वादिष्ट सब्जियां, ढेर सारे कुरमुरे, अचार और रंग बिरंगी मिठाइयां परोसी। जब किसी ने साड़ी या लुंगी में मिठाई छिपाने की कोशिश की तो फरिश्तों ने उन्हें झड़की दी। जितना खाना है यही खाओ, उन्होंने कहा। कई दिनों तक मुत्तू और चेल्लम का नाम पूरे गांव की जबान पर रहा। रेशम का सौदागर कुप्पू स्वामी गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। मुत्तू ने उसके घर कई बार नाटक किए थे, मगर कुप्पू स्वामी ने मुत्तू को ना तो कभी खाना खिलाया ना ही पैसे दिए। जब उसे मुत्तू के जादुई बर्तन के बारे में पता चला तो वह जलभुन उठा। उसने भी ऐसा ही बर्तन चाहा। उन जंगली जंतुओं के लिए मैं एक बड़े पतीले में नींबू चावल ले जाऊंगा, बदले में वे जरूर मुझे जादू का एक बहुत बड़ा बर्तन देंगे, मन ही मन सोचकर कुप्पू स्वामी बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। वह पेड़ों के उसी झुंड में पहुंचा जहां पहले मुत्तू ने चक्कर काटे थे। अयो, यह क्या, मेरा तो सिर चकरा रहा है, कुप्पू स्वामी बोला। अचानक उसे बहते पानी की आवाज सुनाई दी। मैं सोने का नाटक करता हूँ, उसने कहा और लेट गया। कुछ ही देर में वह खर्राटे भरने लगा। फरिश्तों ने यह सब देखा। नींबू चावल के ढेर को देखकर वे शरारत से खिलखिला पड़े। कुप्पू स्वामी की नींद खुली तो क्या देखा, एक बहुत बड़ा बर्तन, एक उरुली। आह, वह खुशी से फूलते हुए बोला, अमीर आदमी के लिए बड़ा बर्तन। उरुली बहुत भारी थी और कुप्पू स्वामी ने बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में धकेला। धूप भी काफी तेज थी। बेचारा बैल सौदागर और उसके नए बर्तन को खींचते घसीटते चल पड़ा। घर पहुंचते ही कुप्पू स्वामी ने ढिंढोरची को गांव भेज दिया। आओ सब लोग आओ, उसने ढोल पीटते हुए कहा, कल रेशम महल में बहुत बड़ी दावत है, सभी लोग जरूर पहुंचें और इस कमाल की दावत का मजा लें। लोगों ने एक दूसरे से कहा, गरीब के घर की दावत में खाना इतना स्वादिष्ट था तो अमीर की दावत तो और भी बढ़िया होगी। बेहतर होगा हम भूखे रहें और दावत में जाकर ही भरपेट खाएं। गांव वालों ने शानदार कपड़े पहने और वे कुप्पू स्वामी के घर के सामने इकट्ठा हो गए। बाहर रखे गए जादुई बर्तन को देख उनकी भूख चमकने लगी। सौदागर ने गला साफ करते हुए ऐलान किया, मैं चाहता हूँ मेरे मेहमान ऐसा भोजन करें जिसे वे कभी ना भूल सकें। कुप्पू स्वामी की जबान से शब्द निकले ही थे कि यह क्या, छोटे छोटे गोल मटोल जंतुओं की एक फौज जादुई बर्तन से बाहर कूदकर मेहमानों पर उछलने लगी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और मूंछें डरावनी थीं। उनके हाथों में डंडे थे। ऊहा ऊहा करके वे हंसने लगे। कभी ना भूलने वाली दावत खाओगे, लो खाओ, और जोर जोर से डंडे घुमाने लगे। डर के मारे चीखते चिल्लाते लोग इधर उधर भागे। रुक जाओ रुक जाओ, कुप्पू स्वामी चिल्लाया, पर उसकी सुनता कौन। शाम को मुत्तू और उसका परिवार बरगद के सामने घेरा बनाकर इकट्ठा हुए। चेल्लम ने दिया जलाया और बच्चों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। शुक्रिया प्यारे फरिश्तों, चेल्लम ने कहा, हमें जादुई बर्तन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब से कोई कभी भूखा नहीं रहेगा। ठंडी शीतल पवन से बरगद के पत्ते सरसराने लगे। हवा में एक मधुर धुन सुनाई दी। मुत्तू चेलम की ओर देखकर मुस्कुराया। फरिश्ते हमारे लिए गा रहे हैं, उसने कहा, आओ हम भी साथ में गाएं। और सभी साथ साथ गाने लगे।